आहान चाहत के मामा को जैसे जैसे समझाया था वो उसके हिसाब से तैयार होकर अंदर आ गया था। चाहत ऊपर की फ्लोर पर अपनी माँ की फोटो के सामने बेसुध होकर बैठी थी, जबकि उसके पास में श्रद्धा उसके पास में चुपचाप बैठी थी। वहीं पार्वती जी एक कोने में गुमसुम सी बैठी हुई थी। पार्वती जी के पास में चाहत की मामी थी, जो पार्वती जी को समझा रही थी। चाहत की मामी ने पार्वती जी के हाथ को सहलाते हुए कहा, जानती हूँ अम्मा, दीदी आपके लिए बहुत स्पेशल थी। उनके चक्कर में आप हम लोगों को भी भूल जाती थीं, पर भगवान के लिखे को कौन टाल सकता है। दीदी बीमार थी, उनकी उम्र ही इतनी थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। वो लगातार बोले जा रही थी, वहां उसकी बातों का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी बीच चाहत के मामा वहां पर पहुंचे। उन्होंने चाहत की मम्मी की तरफ देखकर इशारे से अपने पास आने को कहा। मैं आप सब लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मुश्किल होगा लेकिन जीना तो होगा ही ना अम्मा। चाहत की मामी ने वहां से निकलने के लिए बहाना बनाया और फिर बाहर आ गई। उनके बाहर आते ही चाहत के मामा ने दबी आवाज में कहा, कितना टाइम लगा दी हो वंदना, क्या अम्मा के सामने बैठकर मीठी मीठी बातें कर रही हो, जबकि वो तुम्हारी सच्चाई अच्छे से जानती है। चाहत के मामा की बात सुनकर उसकी पत्नी वंदना ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं जैसी भी हूं लेकिन मुसीबत के समय मैं ही काम आऊंगी। मुझे आप ये बताइए कि आगे क्या करना है। अम्मा को हमें अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा, लेकिन अब तो आपकी भांजी चाहत भी फ्री में मिल रही है। मैं पहले ही कह रही हूँ, मुझे किसी चीज के लिए रोकिएगा मत आप। वो वहां फ्री में खाना खाएगी तो घर का काम भी इसे ही करना होगा। वैसे भी मेरे हाथ घिस गए हैं आपके घर के बर्तन धोते धोते। वंदना की बात सुनकर चाहत के मामा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने वंदना का हाथ पकड़कर कहा, अब से तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक अच्छी खबर है, चाहत को हमें अपने साथ नहीं लेकर जाना पड़ेगा। ऊपर से अम्मा को साथ रखने के इतने पैसे मिलेंगे कि उम्र भर बैठकर खाएंगे। क्यों, तुम्हारी अम्मा की क्या इस उम्र में सरकारी नौकरी लग गई है, या उन्होंने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी थी जो उनकी लॉटरी लग गई? वंदना ने तंज कसते हुए कहा। ऐसा ही समझ लो, अम्मा की कोई लॉटरी लग गई है जिसका फायदा हम उठाएंगे, चाहत के मामा ने हंसकर कहा। और फिर उनके और आहान के बीच में जो भी बात हुई थी उसके बारे में उन्होंने वंदना को बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद वंदना हैरान थी। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर लगाकर कहा, क्या जी, सच बोल रही हो ना? मुझे तो अभी भी ये सपना जैसा लग रहा है। इस बुढ़िया को रखने के 50,000 मिलेंगे, ऊपर से चाहत को भी नहीं लेकर जाना पड़ेगा। बोलते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गईं और फिर उसने अपने पति को हल्के से मारते हुए कहा, क्या जी, कहीं तुम्हारी भांजी कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं करती ना? करती भी है तो हमें क्या लेना देना है, हमें तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं। अब जैसा कह रहा हूँ वैसे करो, हमें अम्मा को यहाँ से लेकर जाना है और चाहत को यहीं पर छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना कि अम्मा की बातों में मत आ जाना, वो चाहत को अपने साथ ले जाने का रहेगी। अगर हम चाहत को अपने साथ लेकर गए तो उन दोनों को अपने साथ रखना भी पड़ेगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। चाहत के मामा ने वंदना को सब कुछ समझा दिया था। वंदना भी लालची थी इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वंदना ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए और मुझे पर यकीन रखिए, देखिएगा मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। अपनी बात कहकर वंदना कमरे के अंदर आ गई। अंदर जाकर वो तेज आवाज में बोली, चलिए अम्मा सामान बांध लीजिए, हमें अभी के अभी गांव जाना होगा। मैं बिट्टू के पापा से बात करके आई थी, आपके देवर जी की भी मौत हो गई है। कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, एक ही दिन में हमने अपने परिवार के दो लोगों को खो दिया। वंदना रोने का दिखावा करने लगी। पार्वती जी, जो अब तक वंदना की सारी बातों को अनसुना कर रही थी, अपने देवर की मौत का सुनकर वो घबरा गई। उन्होंने जल्दी से कहा, ठीक है चलते हैं, लेकिन चाहत, मेरा मतलब है कि अभी तो निशा की मौत की सारी क्रियाएं भी पूरी नहीं हुई हैं। ऐसा करो तुम लोग चले जाओ, मैं चाहत के साथ कुछ रोज बाद आ जाऊंगी। बोलते हुए उन्होंने चाहत की तरफ देखा जो अभी भी बिना किसी भाव के बैठी थी। अरे अम्मा, हम चाहत को बाद में आकर लेकर चले जाएंगे, वैसे भी इसकी सहेली इसके साथ है, और वो लड़का भी तो है जिसने निशा का अंतिम संस्कार किया था, वो सब देख लेगा, अभी हमें जाने की जरूरत है, वंदना ने जवाब दिया और फिर जल्दी जल्दी पार्वती जी का सामान पैक करने लगी। पार्वती उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर सख्त लहजे में कहा, पीछा छुड़ाना चाहते हो ना हमसे, हर बार की तरह? बोलते रही हूं मैं अपनी चाहत को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरा घर अभी तक मेरे ही नाम पर है, तुम सबको घर से निकालकर मैं अपनी चाहत के साथ वहां पर रहूंगी। पार्वती जी की बात सुनकर वंदना के चेहरे पर घबराहट थी। उसने तुरंत उनका हाथ अपने हाथ से अलग किया और फिर अपने पति की तरफ देखा। चाहत के मामा ने मामला अपने हाथ में लेते हुए कहा, अम्मा तुम अच्छे से जानती हो हम कितना कमाते हैं, ऐसे में दो और लोगों का खर्च हम नहीं उठा पाएंगे। सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम इसे हमारे सर पर लाकर पटक रही हो, लड़की की जात है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो सब हम पर ही आएगा। ये शहर में पली बढ़ी है, ये गांव में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। बिट्टू के पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
ये अपना देख लेगी, वैसे भी अब तक देखते ही आई है, वंदना ने कहा। अचानक चाहत अपनी जगह से खड़ी हुई और उनकी तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन आपकी वजह से मेरी नानी को कोई तकलीफ हुई तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। बोलते हुए चाहत की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। वो नानी की जिम्मेदारी अकेले नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उन्हें रोकना भी नहीं चाहती थी। श्रद्धा चाहत की बात से सहमत नहीं थी, वो तुरंत बोल पड़ी, कैसी बात कर रही है चाहत, तू नानी के बिना अकेले कैसे रहेगी? कोई कुछ कहता उससे पहले दरवाजे पर एक तेज और सख्त आवाज आई, मेरे होते हुए ये कभी अकेले नहीं होगी। वो आहान था जो सबकी तरफ सर्द निगाहों से देख रहा था। आहान धीमे कदमों से चलकर अंदर आया और चाहत के मामा मामी की तरफ देखकर बोला, मेरा ड्राइवर तुम लोगों को तुम्हारे गांव छोड़ देगा, ये सब मैं नानी के लिए कर रहा हूँ, अगर उन्हें तुम लोगों ने कोई भी तकलीफ देने का सोचा भी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चाहत की नानी पार्वती समझ गई थी कि अब उन्हें यहाँ से जाना ही होगा। वो चाहत के पास आई और उसके गले लगाकर बोली, तू फिक्र मत कर बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाऊंगी, बस कुछ दिनों की बात है। चाहत उनसे अलग हुई और सख्त लहजे में कहा, नहीं नानी, मुझे आपके साथ नहीं आना है, आप बस अच्छे से रहिएगा, मुझे अब कोई नहीं चाहिए। निशा के जाने के बाद मानो चाहत की दुनिया ही खत्म हो गई थी। पार्वती जी ने श्रद्धा की तरफ देखकर कहा, मेरी चाहत के साथ रहना। फिर वो श्रद्धा के बाद आहान के पास जाकर बोली, आप एक अच्छे इंसान हो, अब तक आपने मेरी चाहत की बहुत मदद की है, आगे भी उसे अकेले मत छोड़िएगा, वो दिल की बहुत सच्ची है, आपके यहाँ मन लगाकर काम करेगी, आप फिक्र मत कीजिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, चाहत के लिए यहाँ मैं हूँ, आहान ने उनके हाथ को सहलाते हुए कहा। आहान नहीं चाहता था कि पार्वती जी अब और वहां पर रुके, उन्होंने चाहत के मामा को इशारे से उन्हें वहां से ले जाने के लिए कहा। फिर चाहत के मामा मामी पार्वती जी के साथ वहां से निकल गए। उनके जाते ही आहान ने श्रद्धा से कहा, तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए, पिछले कई दिनों से तुम अपने घर नहीं गई हो।
लेकिन मैं चाहत के साथ, श्रद्धा चाहत के साथ रुकना चाहती थी, उसकी बात पूरी होती उससे पहले चाहत ने कहा, मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेले रहना है। श्रद्धा, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे डैड आज भी तुमसे प्यार करते हैं, प्लीज घर चली जाओ। श्रद्धा ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर चाहत को हग कर लिया। श्रद्धा पहले जब भी चाहत को गले लगाती थी तब वो काफी खुश होती थी, लेकिन आज चाहत ने श्रद्धा के हक का कोई जवाब नहीं दिया। श्रद्धा समझ गई थी कि चाहत अंदर ही अंदर टूटी हुई है, लेकिन किसी से कह नहीं रही। वो आहान के पास आई और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मिस्टर ओबरॉय, आप चाहत के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, पर अब अगर आप इसके साथ हो तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मेरे लिए चाहत से बढ़कर और कोई नहीं है, मैं आधी रात को भी इसके लिए आ जाऊँगी। नो थैंक्स मिस श्रद्धा, आहान ने जवाब दिया। श्रद्धा ने जाने से पहले एक नज़र चाहत की तरफ देखा जो वहां पर खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। उसके बाद श्रद्धा वहां से चली गई। अब वहां आहान और चाहत के अलावा और कोई नहीं था। चाहत इस वक्त वाकई अकेले रहना चाहती थी। उसने आहान से कहा, आप भी चले जाइए आहान, अब यहाँ आपके लिए भी कुछ नहीं बचा है, मुझे कुछ देर के लिए सच में अकेले रहना है। आहान ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें इस हाल में अकेले कभी नहीं छोड़ूंगा डॉल, तुम बाकी लोगों को यहाँ से निकाल सकती हो लेकिन मुझे नहीं, तुम भी यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, मुझे मेरे मम्मा के साथ थोड़ा टाइम बिताना है। चाहत ने जवाब में कहा, तुम्हारी मम्मा की यादें हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगी, कोई उन्हें तुमसे अलग नहीं कर रहा है, आहान ने सख्त आवाज में कहा, और फिर चाहत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। चाहत उसे रोकना चाहती थी लेकिन चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी, वो चुपचाप उसके साथ चल रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों आहान के घर पर पहुंच चुके थे, आयुष वहां पहले से था। चाहत और आहान को साथ में देखकर वो जल्दी से बाहर आया। चाहत की हालत देखकर उसे बहुत दया भी आ रही थी। फिर उसने आहान की तरफ देखकर कहा, आप दोनों ने कुछ नहीं खाया होगा। आहान कुछ कहता उससे पहले चाहत बोल पड़ी, मुझे भूख नहीं है, बहुत नींद भी आ रही है। चाहत की बातों को इग्नोर करते हुए आहान बोला, किसी हाउस हेल्पर को बोलकर हम दोनों के लिए ऊपर खाना भिजवा देना, तुम्हारा रूम नीचे है, तुम भी मेडिसिन लेकर रेस्ट करोगे, तुम रात को अकेले नहीं सोओगे, मैंने हमारे कजिन सनी को बोल दिया है, वो कुछ ही देर में आता होगा, तुम्हारी उसके साथ अच्छी जमती है। आहान को चाहत की परवाह थी लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो आयुष को भूल गया था। वैसे तो आहान के घर में आने की इजाज़त आसानी से किसी को नहीं मिलती थी, लेकिन आयुष के लिए उसने इतना एडजस्ट कर लिया था। वो लोग बात कर रहे थे तभी उनका कजिन सनी वहां पहुंचा। वो आयुष का ही हम उम्र था लेकिन उसने कपड़े अलग तरीके के पहन रखे थे। उसने डेनिम कैप्री के ऊपर टी शर्ट पहना था और कैप लगा रखी थी। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। सनी को वहां देखकर आयुष काफी खुश हुआ और दोनों कमरे में चले गए। वहीं आहान चाहत को लेकर अपने रूम में पहुंचा। उनके वहां पहुंचने के थोड़ी देर में ही उनका खाना आ गया था। खाना देखते ही चाहत ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है आहान, प्लीज जिद मत कीजिए। जिद तो तुम कर रही हो डॉल, मैं तुम्हारी बाकी सारी बातें मान सकता हूँ लेकिन ये नहीं, तुम अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं रहोगी, चलो चुपचाप खाना खाओ, आहान ने उसे डांटते हुए कहा,
और फिर अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। खाना खाते हुए अचानक से चाहत ने कहा, क्या आप मेरी सारी बातें मानोगे आहान? आहान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम एक बार मांग कर तो देखो, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, लेकिन प्लीज ये मत कहना कि मुझे मेरी मम्मा वापस चाहिए। तुम अच्छे से जानती हो कि एक बार जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है वो वापस लौट कर नहीं आता। चाहत कुछ भी ऐसी वैसी डिमांड रखती जो पूरी ना हो सके, उससे पहले ही आहान ने उसे बता दिया था। चाहत भी अच्छे से समझती थी कि अब उसकी मम्मा वापस नहीं आ सकती। खाना खत्म हो जाने के बाद उसने धीरे से कहा, आहान अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे अपने दर्द को भूलना है और ये सिर्फ आप कर सकते हो। आपने मुझे कहा था ना आहान, आप मुझे सब कुछ देंगे, तो मुझे दर्द चाहिए। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये कैसे होगा, मुझे सब भूलना है आहान, तो मुझे इतना दर्द दीजिए कि मैं अपनी मम्मा के जाने का दर्द भुला सकूं। बोलते हुए चाहत की आंखों में आंसू थे। जहां पहले आहान के करीब आने पर चाहत घबरा जाती थी, वहीं आज वो खुद उसे अपने पास आने को कह रही थी। आहान उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले चाहत ने अपना दुपट्टा हटाकर साइड में रख दिया।